ओम शांति। कहा जाता है कर्मों की बहुत गहन गति है। कभी कभी कर्मों की गहन गति के बारे में सुनते हैं तो जीवन का सफर सामने आ जाता है, और खासकर जब इंसान अपने देह को त्यागता है उस वक्त तो रील की तरह जीवन का सफर हमारे आगे घूमता है और अंदर एक प्रकार का डर भी पैदा होता है कि अभी हम भगवान को क्या जवाब देंगे। तो ऐसे कहेंगे कि ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर अभी ही हम जीवन के सफर के बीच में इन बातों को सुनते हैं तो शायद हमारा सफर अच्छा हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, हम जागरूक हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम खोलेंगे एक रियल किस्से के साथ। 1994 की बात है, अमेरिका के अंदर फॉरेंसिक एकेडमी के अंदर जो उसका प्रेसिडेंट था, जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं और कॉज जानने की कोशिश करते हैं। तो उस फॉरेंसिक लेबोरेटरी का प्रेसिडेंट डॉक्टर मिल हार्पर एक पार्टी में बैठे हुए थे। पार्टी में बैठे हुए अपने दोस्त के साथ तुरंत में हुआ किस्सा डिस्कस कर रहे थे। जैसे अहमदाबाद के अंदर अभी हादसा हुआ, ऐसा हादसा बड़ा भयानक हुआ कि आज हर एक के होठों के ऊपर वही बात है, दिमाग में वही चित्र है, हुआ तो कैसे हुआ। तो ऐसे ही वो प्रेसिडेंट अपने दोस्तों के साथ बातचीत डिस्कशन कर रहे थे और उन्होंने वो किस्सा सुनाया। वो किस्सा था रोनाल्ड डोपस नाम का एक व्यक्ति था, उसने आत्महत्या की है ऐसा कहा गया, और सचमुच उसने कोशिश की थी कि 10th फ्लोर से उसने जंप मारा, लेकिन 8th फ्लोर पे कुछ काम चल रहा था तो उधर पार्टी लगे हुए थे तो वो नीचे ना गिरकर 8th फ्लोर पे उस पार्टी के ऊपर गिरा और वो एक नोट लिख करके गया, मैं अपने जीवन से दुखी हूं, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मैं बहुत डिप्रेस हूं, इसीलिए मैं स्वयं खुदकुशी कर रहा हूं जिसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। तो वो चिट्ठी भी मिली परंतु जब ऐसी घटना घटती है तो उसकी चेकिंग अच्छे से होती है, उसकी तहकीकार अच्छे से होती है। तो जब वो मामला तहकीकार के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी में गया तो देखा कि ये किस्सा आत्महत्या का नहीं है, इसके सिर में गोली लगी है और ये गिरने से नहीं मरा लेकिन उस गोली से मरा है। तो ये किस्सा क्या है, मर्डर का किस्सा है। तो उसकी जांच बहुत बारीकी से की गई तो पता चला कि 9th फ्लोर पे एक कपल, वृद्ध कपल रहता था, जिस वक्त इसने जंप किया उस वक्त दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, और ऐसा झगड़ा चल रहा था, गर्मा गर्मी में आ गए और पति ने क्या किया, पिस्तौल निकाली और उसने पत्नी को शूट करने की कोशिश की और वो गोली उसकी पत्नी को न लग करके वो ऊपर से जो गिर रहा था डॉपस उसको सिर में लगी और उसकी हत्या हो गई। तो ये जब उन्होंने तहकीकार किया तो पता चला, तो वो और तहकीकार के लिए उस कपल के पास गए और उससे पूछा, क्या इस वक्त आप दोनों का झगड़ा चल रहा था? तो उसने कहा हां झगड़ा चल रहा था और बहुत गर्मा गर्मी हुई। और हर दिन की तरह जब भी हमारा झगड़ा होता है तो मैं मेरी पत्नी को डराने के लिए पिस्तौल का इस्तेमाल करता हूं। आवाज आती है लेकिन उसके अंदर गोली नहीं होती है। लेकिन ये बात सत्य है कि आज उस पिस्तौल के अंदर गोली थी और वो गोली शायद लगी होगी, क्योंकि मेरी वाइफ को ना लग करके कहीं तो गई। तो उसकी वाइफ ने भी कहा हां हमेशा ये पिस्तौल का इस्तेमाल जरूर करते हैं लेकिन कभी ये मुझे मारेंगे नहीं। ऐसा झगड़ा तो हमारा पता नहीं कितनी बार होता है। तो और जांच की तो थर्ड पर्सन ने बताया कि ये डोपस जो है उनका ही बेटा है और कुछ दिन पहले उसका उसके मां के साथ झगड़ा हुआ था क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट था, बहुत पीता था, कुछ काम नहीं करता था। तो उसको सिखाने के लिए उसकी मां ने उसको कहा था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी से आपको कोई हिस्सा नहीं दूंगी। तो उसको बहुत गुस्सा लगा और उसे पता था कि मेरा पिताजी जो है उन दोनों माँ और बाप का जब झगड़ा होता है तो पिताजी इस बंदूक का जरूर इस्तेमाल करता है। तो माँ के ऊपर क्रोधित था तो उसने क्या किया, उस पिस्तौल के अंदर गोली रख दी थी जो उसके पिता को पता नहीं था। एज यूजुअल उसने गोली का इस्तेमाल पिस्तौल का इस्तेमाल किया और वो गोली उसके ही बेटे को लगी। तो कहने का भाव कि जो केस आत्महत्या का था वो लेबोरेटरी के अंदर प्रूव हुआ कि ये मर्डर का केस है और लास्ट में जब तहकीकात हुआ तो वापस ये प्रूव हो गया ये तो आत्महत्या ही कहेंगे, क्योंकि उसके बेटे का इंटेंशन ऐसा था। तो कर्म के अंदर हमारा इंटेंशन बहुत महत्व रखता है और कर्म की गति बहुत गहन है। लॉ है कि जो बोया है वही पाएंगे, कॉज एंड इफेक्ट थियरी। बॉल डाला है दीवार पे, जितनी जोर से डाला है उतनी जोर से वो वापस आने वाला है। मैंने डाला ही नहीं तो वो आएगा ही नहीं। तो जीवन में कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। कर्म तीन सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड है, जो बोएंगे वह पाएंगे, एज यू सो सो यू रीप, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो जा रहा है घूम रहा है वो वापस मेरे पास आने वाला है। और न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इफेक्ट है, उसके बगैर जा नहीं सकता। परंतु आज के समय में जितना हम लोगों को अपने कर्म के ऊपर ध्यान होना चाहिए, उतना ध्यान हम कर्मों पर नहीं दे रहे हैं। जितनी श्रेष्ठ कर्मों की जागरूकता हमारे पास होनी चाहिए, आज वो हमारे पास नहीं है। कहते हैं ऋषि मुनियों ने जीवन के कई मूल्यों को, कई सिद्धांतों को जरूर मनुष्य को सुनाया है, लेकिन वो सुनाते हुए भी हमने अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ गफलतें जरूर की है। और कई कर्म तो जाने अनजाने भी हो जाते। इसीलिए गीता के अंदर भगवान ने अर्जुन को अलग अलग अध्याय के अंदर कर्मों का, गुह्य गति का जो अलग अलग स्वरूप है, कॉज एंड इफेक्ट, वो अलग अलग तरीके से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा है कि आपको कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, तीन प्रकार के कर्म मनुष्य के जीवन में होते रहते हैं, चलते रहते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो अकर्म क्या है? अकर्म है जो कर्म करते हैं लेकिन उसका फल नहीं है, वो वहीं समाप्त हो जाते हैं, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता, जिसको न्यूट्रल कर्म कहते हैं। विकर्म क्या है? तो विकर्म है विकृत भाव से किए हुए कर्म, देह अभिमान में आकर किए हुए कर्म, विकारों के वशीभूत होकर के किए हुए कर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, डर आदि से किए हुए जो कर्म है वो विकर्म है। लेकिन कर्म क्या है? कर्म है श्रेष्ठ कर्म, जिसको सुकर्म कहते हैं, जिसको पॉजिटिव कर्म कहते हैं। और उस पॉजिटिव कर्मों का फल बहुत जन्मों तक चलता है। आज एग्जाम्पल के तौर पर जो हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो ऐसे कहेंगे कि एक किसान एक बीज बोता है, उसको पानी देता है, धूप दिलवाता है, उसकी परवरिश करता है और वो बीज पौधा बनता है। पौधा बनने के बाद वो वृक्ष बनता है और वृक्ष बनने के बाद उसमें फल लगते हैं। और एक बीज में से अनेक हजारों फल लगते हैं और एक बार नहीं लगते, हर सीजन में लगते हैं। अर्थात श्रेष्ठ कर्म का फल अनेक जन्मों तक हमको मिलता रहता है, परंतु उस फल को मैंने लगाया, मैंने ही उसे तोड़ा और खाया, तो बीज लगाना वो हमारा श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन उस वृक्ष से उस फल को तोड़ करके खाना वो अकर्म है, क्योंकि तोड़ के खाया तो खत्म, उसका फल आगे नहीं चलता, आगे नहीं बढ़ता, खाया और समाप्त, तो वो अकर्म हुआ। लेकिन वो बीज बोया, आज फल मिला, अनेक सीजन में मिला और अनेक बार खाया, वो श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि वो कर्म इतना पावरफुल है, इतने जन्मों तक चलता है, इतना श्रेष्ठ है, इतना पावरफुल है। और विकर्म क्या है? विकर्म विकारों के वशीभूत होकर के कर्म जो मैं करती हूं, आज ईर्ष्या में आकर किसी को मैं दुख देती हूं, तो वो विकर्म है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी कर्म हो जाते हैं जो मुझे पता नहीं है ये विकर्म है, लेकिन वो विकर्म बन जाते हैं, करने जाते हैं श्रेष्ठ कर्म। जैसे मैं मंदिर में जा रही हूं, मैंने वहां एक भिखारी की दयाजनक स्थिति को देखा और मुझे मन में दया आई, मैंने उस व्यक्ति को जेब से 100 रुपया निकाला और दिया। तो मैं समझती हूं कि मैंने श्रेष्ठ कर्म कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं है वो श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि उस व्यक्ति का आगे इंटेंशन क्या है उसके ऊपर वो कर्म निर्धारित है। सपोजिंग उस व्यक्ति को वो 100 रुपया मिला और उसको अपने दुश्मन की याद आई और उसने उस 100 रुपये से चाकू खरीदा और उस व्यक्ति को मार दिया जिससे दुश्मनी थी, तो उसका फल तो विकर्म बनता ही है, क्योंकि उसने उसको मारा, लेकिन उसमें मेरी भागीदारी भी है, मेरा हिस्सा भी है, क्योंकि अगर मैंने उसको 100 रुपया नहीं दिया होता तो वो चाकू नहीं खरीद पाता और शायद उसने हत्या नहीं की होती। तो भले मैंने श्रेष्ठ कर्म किया, लेकिन वो बन गया विकर्म, विकर्म के खाते में जमा हो गया। आज श्रेष्ठ कर्म का जीवन के अंदर इतना महत्व है, इतना महत्व है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर कुकर्म बहुत है, दुख बहुत है, लोगों को अपने कर्म की जागरूकता नहीं है, इसीलिए जहां तहां हम ऐसे हादसे सुनते हैं जिसमें हम कहते हैं मैंने सोचा नहीं था, मैंने कुछ किया नहीं, फिर ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं चल रही हूं अपने रास्ते में, कोई आता है मेरे साथ एक्सीडेंट करके चले जाता है, मेरा कोई दोष नहीं है, उस वक्त मेरे मन से निकलता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो उस वक्त हमें याद होना चाहिए कि मैंने कभी गेंद डाली थी पास्ट के अंदर, जरूरी नहीं है उसका हिसाब उसी जन्म में मुझे चुकतू करना पड़े। इसीलिए हमारे मुख से निकलता है, पता नहीं है कौन सा कर्म आड़े आ गया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये कौन सा कर्म आड़े आ गया। तो कौन सा कर्म? पास्ट का कर्म, वो आड़े आया। मैंने बॉल फेंका ही नहीं तो वो मेरे पास वापस कैसे आ सकता है। तो जब हम कर्म करते हैं तो उसमें पास्ट भी इन्वॉल्व होता है, प्रेजेंट भी इन्वॉल्व होता है और फ्यूचर भी इन्वॉल्व होता है। आज कुछ मेरे साथ हुआ तो मैंने पास्ट में कुछ किया था और वो मेरे पास वापस आया। अगर मुझे श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान है, जागरूकता है, तो आज प्रेजेंट में मैं जो कर्म करूंगी उसके ऊपर मैं ध्यान दूंगी। ऐसे नहीं सामने वाले ने गुस्सा किया तो मैं उतना ही गुस्सा करूं, या कई तो उससे डबल होकर के गुस्सा करते हैं, उसकी आवाज को शांत करने के लिए और जोर से बोलते हैं। तो क्या होगा? ये सिद्धांत मुझे याद होगा कि आज प्रेजेंट में मैं जो बॉल फेंकूंगी फ्यूचर में वो मेरे पास आना ही है। तुरंत भी आ सकता है, कुछ घंटों के बाद भी आ सकता है, जन्म के लास्ट में भी आ सकता है और फ्यूचर के जन्म में भी आ सकता है, फ्यूचर के जन्म में भी आ सकता है। लेकिन कुछ गलत फहमियां हमारे अंदर है। जैसे कहते हैं कि मैंने अगर 10 बुरे कर्म किए हैं, मैं बिजनेस करता हूं, मैंने फ्रॉड किए हैं, मैंने इलीगली पैसे कमाए हैं, बहुत धनवान बन गया, तो मैं अगर थोड़ा दान पुण्य करूंगा, दान धर्म करूंगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा। क्या सोचते हैं, बैलेंस होता है? कुछ बुरे कर्म किए, कुछ अच्छे कर्म किए, तो इस दोनों का बैलेंस हो सकता है? हो सकता है? कर्म का लॉ है, जो बोया है वो मुझे मिलेगा ही। मैंने बुरा किया है तो मेरे साथ बुरा होना ही है, मैंने अच्छा किया है तो मेरे को कुछ अच्छी प्राप्ति होनी है, होनी है। दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, दोनों अलग होके बैलेंस नहीं हो सकता है, दोनों का अलग अलग हिसाब मुझे चुकतू करना पड़ा, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। ऐसे कहेंगे कि आज किससे मैंने 500 रुपए उधार लिए और मैं कहूं उसको 500 रुपए मैं दूंगी नहीं, वो 500 रुपए लेकर के मैं कुछ दान पुण्य कर लेती हूं, कोई अच्छा काम कर लेती हूं और उस व्यक्ति को कहती हूं कि भाई मैंने तेरे 500 रुपए अच्छे काम में यूटिलाइज किए, अभी आप भूल जाओ। वो व्यक्ति भूलेगा? वो व्यक्ति भूलेगा? वो क्या कहेगा? मेरे से उधार लिए हैं, मुझे वापस दे दो। अगर आपको दान पुण्य करना है तो आप अपनी कमाई से दान पुण्य करो, मेरी कमाई से दान पुण्य नहीं करो। तो अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म करना हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इतने हादसे हो जाते हैं। तो उन हादसों से अच्छे से बाहर निकलने के लिए मेरे खाते में श्रेष्ठ जन्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ना चाहिए। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ा हुआ है तो ऐसे संकट के समय, ऐसे मुश्किलातों के समय वो किया हुआ कर्म मुझे फास्ट बाहर निकालता है। देखते हैं, रास्ते चलते एक्सीडेंट्स इतने होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी पूरी खत्म हो जाती है, लेकिन अंदर के व्यक्ति को खरोच भी नहीं आती है, खरोच भी नहीं आती है। तो क्यों नहीं आई खरोच? उसके पुण्य का खाता, उसके दुआओं का खाता उसको बचा लिया। तो कहते हैं इसके पास दुआओं का खाता बहुत है। दुआओं का खाता कैसे जमा होता है? जब हम किसी को सुख देते हैं, जब हम किसी को सुख देते हैं, जैसे कोरोना के समय अपनी जान की बाजी लगा करके भी कई डॉक्टर्स ने कितने मरीजों की दवाई की, उनको ठीक किया, तो जितनों को ठीक किया उनके मन से क्या निकला, क्या निकला? दुआ निकली। तो दुआओं का खाता मुश्किलात के समय, आई वेल के समय काम आता है। दूसरा है पुण्य का खाता। तो जब हम पुण्य कर्म करते हैं, किसी का भला करते हैं, भावना, शुभ भावना, शुभ कामना से करते हैं किसी के प्रति, तो पुण्य का खाता जमा होता है। और पुण्य का खाते का फल क्या है? मेरे जीवन के अंदर सुख, मेरे जीवन के अंदर शांति, मेरे जीवन के अंदर संतुष्टि, संतुष्टता, मेरे परिवार के अंदर शांति, वो पुण्य का खाता है। आज कहते हैं बुद्धिमान योगी वही है जो कर्म के अंदर अकर्म को देखता है। कर्म के अंदर अकर्म को देखना स्वाभाविक है। आज मैंने बीज बोया, कल फल आया, उसको मैंने खाया, तो बीज बोया श्रेष्ठ कर्म और फल खाया वो अकर्म। लेकिन बुद्धिमान वो है कि अकर्म के अंदर भी कर्म को देखता है। अर्थात जिस वक्त मैं वो फल खाती हूं, उस वक्त मुझे याद है कि मुझे ये फल को यहां ही पूरा नहीं करना है, तो उस फल से जो बीज निकलता है, गुठली निकलती है, बीज निकलता है, उसका मुझे फिर से पूर्ण रोपण करना है, उसको फिर से मुझे लगाना है और उनसे भी अनगिनत फलों की प्राप्ति होगी। वो है बुद्धिजीवी योगी। खा के फेंक नहीं दिया, लेकिन उसका पुनरोपण किया। एक योगी खेती के अंदर गए, जहां वो भाई ने सुनाया कि देखो इतने सारे फल हमने लगाए हैं, ये परमात्मा की याद में लगाए हुए फल है, शुभ भावना शुभ कामना रख करके मेडिटेशन करके हम फल लगाते हैं। फिर बोला ये सब फल हमारे लिए नहीं है, कुछ फल मैं चिड़ियाओं के लिए भी लगाता हूं। जो फल मैं चिड़ियाओं के लिए लगाता हूं उसके लिए मैं आवाहन करता हूं कि हे चिड़ियाएं, आप भी अपना हिस्सा खाओ, आओ और आप भी अपना हिस्सा खाओ। लेकिन उसके साथ मैं चिड़ियों को एक बात जरूर कहता हूं कि आप जो फल खाओ उसको पूरा खाओ, उसके बाद दूसरे फल को छुओ। ऐसे नहीं कि आज एक फल थोड़ा खाया, कल आके दूसरे फल से खाया, परसों तीसरे फल से खाया, ऐसे सारे फल बिगाड़ दिए। नहीं, मैं उनको कहता हूं कि जो फल खा रहे हो वही फल खाना, उसको पूरा करना, फिर दूसरे को टच करना। और ये बात चिड़िया सुनती है और उसने दिखाया कि देखो ये पूरा फल इसने खा लिया है, सिर्फ इसकी गुठली बची है, छिलके बचे हैं और कोई फल खराब नहीं किया है। ऐसे ही पुराने जमाने में किसान हुआ करते थे तो कुछ खेती के अंदर जो भी उत्पादन करते थे वह अपने लिए करते थे, बेच करके उसका फल वो खुद खाते थे, लेकिन कुछ एरिया छोड़ते थे जिसके अंदर वो जो बोते थे वो बांटते थे, देते थे, और जिसको देते थे उसका हो जाता था। तो वो क्या है, अपने लिए कमाना क्या है, वो एक साधारण कर्म है। लेकिन निस्वार्थ किसी के लिए मेहनत करना और उसको देना, वो दान करना, वो पुण्य कर्म है। और वो भावना के साथ जो भी खाए, जो भी आए, वो जो भी खाए उससे कुछ लेना नहीं, उसको संतुष्ट करना, उसको खुशी देना, इस भावना से खाते हैं। तो ये श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म का खाटा आज इंसान को चाहिए, जो हमें मुश्किलों से पार कर देता है, मुश्किलों से पार कर देता है, वो दुआ बनके हमारे जीवन के अंदर काम करता है। भागीदारी के कर्म बताए, जो विकर्मों का भी फल होता है। भागीदारी में कई कर्म विकर्म भी हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दें, तो एक कसाई है, कसाई ने एक जानवर को मारा, मार करके उसने बेचा एक दुकानदार को, दुकानदार को भेजा और उसके बाद उस दुकानदार से एक व्यक्ति ने खरीदा, होटल वाले ने खरीदा, और होटल वाले ने खरीदा तो उसको किसी ने बनाया और खाने के लिए 50 लोग वहां आए, पार्टी थी तो वो 50 लोगों ने खाया। तो इसमें कर्म की भागीदारी क्या है, जो कसाई था उसका तो पाप कर्म बना, लेकिन उसका भागीदार कौन बना, जो दुकान वाले ने खरीदा। और उसने जो होटल वाले को बेचा वो भी भागीदार बना, और उस भागीदारी में जो 50 लोग उस होटल में पार्टी में खाने आए वो भी भागीदार बने। सभी का विकर्म का खाता भागीदारी में बन गया। अब ये खाता जब फल भोगने का टाइम आता है, जरूरी नहीं है उसी जन्म में आए, सपोज नेक्स्ट, नहीं तो उसके भी नेक्स्ट जन्म में, जब सारे के सारे भागीदार एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उस फल का इकट्ठा परिणाम उस फल का इकट्ठा परिणाम उनको भोगना पड़ता है। तो वो कैसे होता है? तो जो कसाई था वो बस का कंडक्टर ड्राइवर बनता है, वो जो दुकानदार था वो कंडक्टर बनता है, बाकी के जो लोग भागीदारी में थे वो उस बस के यात्री बनते हैं। बस जा रही है, कुछ कारण नहीं, नीचे नदी है, पुल से गुजर रही है बस, और अचानक से ड्राइवर का बैलेंस चला जाता है, गाड़ी नदी में गिर जाती है। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी को सिर में लगा, किसी की कमर टूट गई। तो जैसी जैसी भागीदारी होती है उस कर्म में, विकर्म में, उस हिसाब से उसको फल मिलता है। लेकिन पेपर में क्या आता है? पेपर में क्या आता है, क्या पढ़ते हैं कि एक ड्राइवर जिसके गैर जिम्मेवारी के कारण, लापरवाही के कारण 50 जने की मौत हुई। अरे कई लोग उस बस में चढ़ने वाले हैं, उन्होंने मिस कर दी क्योंकि वो भागीदार नहीं थे। कई उसी बस में थे लेकिन उनको खरोच भी नहीं आई, जिंदा रह गए, तो उनकी भी भागीदारी नहीं थी। कई लोग जहां एक्सीडेंट हुआ उससे एक स्टेशन पहले उतर गए, उनकी भी भागीदारी नहीं थी। तो जरूर ये भागीदारी है, इसके हिसाब से कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। इससे एक कहानी मुझे और याद आ रही है। एक बारी दो दोस्त थे, वो कमाई के लिए विदेश जा रहे थे, समुद्री यात्रा कर रहे थे, और वो विदेश पहुंचे, बिजनेस किया अच्छी कमाई करने के बाद वो लोग वापस लौट रहे थे जहाज में। ऐसे समय पर एक दोस्त की नियत बिगड़ गई। उसने कहा, हम दोनों ने इकट्ठे पैसे कमाए हैं, आधे आधे पैसे हैं, अगर मैं इसकी हत्या कर दूं तो सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। तो जिस वक्त सन्नाटा हुआ वो अपने दोस्त को स्टीमर के ऊपर ले जाता है जहां एकांत थे। वहां जाकर के उस दोस्त को धक्का मार देता है। उसको तैरना तो नहीं आता था, बहुत चिल्लाया, लेकिन एकांत थी, किसी ने नहीं सुनी। वो दोस्त मर जाता है और ये घर वापस आता है। जैसे ही घर वापस आता है तो जो दोस्त मर गया ना, उसके घर वाले आते हैं और पूछते हैं, भाई तुम्हारे साथ हमारा बंदा गया था, उसका क्या हुआ? हमारा बच्चा गया था, वो क्या हुआ? तो कहता था कि वो भी मेरे साथ था, हम स्टीमर में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन रास्ते में मुझे बोल रहा था, देखो तुमने तो बहुत कमा लिया लेकिन मैंने इतना कमाया नहीं है, अब मैं घर जाके क्या जवाब दूंगा। उसको आत्मग्लानी अनुभव हुई और उसने कब छलांग लगा दी, मैं देखता ही रहा, और उसने आत्महत्या कर ली। और उससे पहले मुझे बोल रहा था कि मैंने कुछ कमाया नहीं है, तो मेरे घर वाले अपनी किस्मत से जो कमाएंगे वो खाएंगे। अब ये जो दोस्त वापस आया था, उसकी शादी हुई, अच्छी कन्या मिली और उसको एक बच्चा हुआ। बच्चे का स्वागत बहुत अच्छे से किया। नामकरण के दिन पंडित आते हैं, वो जन्म कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली देखी तो उन्होंने बाप को कहा कि भाई इसको गरीब की तरह रखना, ये जो मांगे उसको नहीं देना। तो सोच में पड़ गया, मेरे पास इतना धन है, इतनी मिलकत है, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगा तो किसको दूंगा, उसकी सब इच्छाएं पूरी नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा। तो थोड़ा समय तो उसको याद रहा उस संत की बात, उस महाराज की बात, इसको गरीब की तरह रखना। तो नॉर्मल रीति से उसको ट्रीट कर रहा था, लेकिन कुछ वर्ष बीत गए, वो बात को भूल गया और ये भी सोचा कि मेरे पास है तो उसको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। तो सब कुछ भूल गया और उसकी हर इच्छा पूरी करता था, सब कुछ देता था, एक अमीर बच्चों की तरह ही उसको रखा। वो बच्चा बड़ा हुआ 25 साल का, उसके शादी का टाइम आया, अच्छी कन्या, सुशील कन्या मिली। लेकिन शादी के एक दिन पहले उसके बच्चे को नाग ने काटा, सांप ने काटा, और इतना जहरीला सांप। उस सेठ ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की उसको बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाया। वहां उसने जो पैसा लाकर के मुनीम को दिया था, मुनीम रखा था वहीवट के लिए, कारोबार संभालने के लिए, उस मुनीम को पहले से ही शंका हो गई थी कि शायद इसने उसके पैसे आधे ले लिए थे अपने दोस्त के। तो उस वक्त जब आया था ना, तो उसने उसके टोटल पैसे में से आधा कितना होता है वो लिख करके रखा था। और जैसे ही ये बेटा उसका जिसको सांप ने डसा था, वो मृत्यु के अंतिम सांसें गिन रहा था, उस वक्त उसका पिता और माता दोनों सामने खड़े थे और वो बेटा मरते समय उस पिता को देख करके हंस रहा था। तो उसने पूछा, तू विदाई ले रहा है और हंस रहा है? तो बेटे ने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं जो हम साथ गए थे विदेश में, और तुमने मेरी हत्या की थी। मैंने तेरे ही घर में जन्म लिया और मैंने अपना धन सूत सहित, खाली धन जो लिया वो नहीं, लेकिन सूत सहित मैंने वापस ले लिया, इसीलिए मैं तेरे से विदाई ले रहा हूं। तब उस सेठ को समझ में आया क्यों उस महात्मा ने कहा कि इसको गरीब की तरह रखना, क्योंकि उसने देखा कि उसकी जीवन रेखा छोटी है। अगर इसको अच्छे ढंग से रखा, अच्छी पालना दी, तो उसका सूत और ब्याज जल्दी पूरा हो जाएगा और वो मरेगा। लेकिन अगर गरीब की तरह रखेगा तो शायद वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए और जिंदा रहे और उसकी लंबी उम्र हो जाए। कहने का भाव, किसी भी जन्म में कभी भी किसी से भी हमने उधार लिया है और उसके साथ छल किया है, उसको वापस नहीं किया है, किसी न किसी जन्म में किसी न किसी रीति से किसी न किसी बल्कि क्लोज संबंध में वो जन्म लेते हैं और अपना हिसाब किताब उस व्यक्ति से पूरा करते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर भी जो कुछ घट रहा है ऐसे ही नहीं घट रहा है, कभी नहीं सोचना, क्योंकि मैंने कभी तो वो बॉल फेंका है और जिस भावना से फेंका है वो भावना के वाइब्रेशन उसी फल के रूप में मुझे कभी न कभी चुकतू करना पड़ेगा। तो कभी भी कोई किसी को छल नहीं सकता है, कभी भी किसी को छल नहीं सकता है। आज कोई धंधा कर रहा है उसको छलने की आदत है, इलीगल सब कुछ करने की आदत है, उसके घर में एक ही संतान ऐसी पैदा हो जाती है कि सारा धन जुआ में शराब पीने में कहीं ना कहीं खत्म कर देती है। तो जिस तरीके से कमाया हुआ धन है वो उसी तरीके से उस ओर जाएगा, जैसे धन आया उस ढंग से वो धन जाएगा एक मिनट में। आज कोरोना काल में सिर्फ बीमारी हुई, एक बेड को लेने के लिए एक बेड क्या हुआ, लाखों रुपया गया बेड को लेने के लिए, तो कैसे धन आया होगा और कैसे एक सेकेंड में चला गया, है ना। तो पुण्य कर्म का हमारे जीवन के अंदर बहुत बहुत महत्व है जिसको हम ध्यान नहीं देते जीवन भर। एक छोटी सी कहानी बता करके हम पूरा करेंगे। एक सेठ जी था, उसके तीन बेटे थे, दो बेटे की शादी हो गई थी, तीसरे बेटे की शादी धूमधाम से हुई, नई बहू घर में आई, बहुत सुशील थी, बहुत समझदार थी। जैसे ही घर में आई तो पहली वाली दो बहुएं वो उसको बिठाती है और घर का कायदा सुनाती है। घर का कायदा क्या सुनाती है कि हमारे जो ससुर जी है, माना वो सेठ जी, हमारे जो ससुर जी है उसका कायदा है घर में कोई मांगने के लिए आए तो उसको दान नहीं देना है, ये हमारा घर का कायदा है। वो सोच में पड़ जाती है ये कैसी मानसिकता है, किसी को दान नहीं करना है, परंतु घर का कायदा है इसीलिए कायदे में वो चलती है। एक साल हो जाता है, वो नई बहू जो थी वो फर्स्ट फ्लोर पे कपड़े सुखा रही है और नीचे ससुर जी जो है पेपर पढ़ रहे हैं, और वहां एक भिखारी आता है, भीख मांगता है और कहता है, क्या कहता है, तीन जन्मों का भूखा हूं। तो ऊपर से जो बहू खड़ी थी ना कपड़े सुखा रही थी उसने जवाब दिया, बासी खाना खा रहे हैं कल उपवास है। तो वो भिखारी वो ये बात सुनकर के चला गया। ससुर जी ने ये बात सुनी, उसको बहुत बुरा लगा, मेरी बहू क्या कह रही है बासी खाना खा रहे हैं, कब मैंने उसको बासी खाना खिलाया, फिर कहती है कल उपवास है, इसको कब कहा हमने उपवास रखो, झूठ बोलती है, मेरी इज्जत खराब कर रही है, आज इसने भिखारी को कहा कल किसी और को कहेगी। तो सेठ जी ने अपने समधी को फोन किया और उसको कहा कि मेरे को आपकी बेटी नहीं चाहिए, ले जाओ उसे। अब वो बेचारा सोच में पड़ गया, मेरी लड़की इतनी सुशील, इतनी अच्छी, और आज मेरा समधी मुझे फोन कर रहा है मेरी बेटी को ले जाओ, ये क्या है? उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है मैं क्या करूं, लेने जाऊं क्या? आज का जमाना होता तो पहुंच जाता वो लेने के लिए, लेकिन वो जमाना था जन्म इस घर से तो अर्थी उस घर से, तो सोच में पड़ जाता है और पंचों के पास जाता है और पंचों को कहता है आप मेरे बेटी को जानते हो ना? बोले हाँ, वो तो बहुत सुशील है, बहुत गुणवान है। तो बोले हाँ, बस वही तो मुझे फिक्र है कि इतनी अच्छी है फिर भी मेरे समधी ने फोन किया है अपनी बच्ची को ले जाओ। तो पंच कहता है कोई बात नहीं, हम सेठ जी को बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा, सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आया और उनसे पूछा क्या बात है। तो उसने सुनाया एक भिखारी आया, भीख मांग रहा था, और मेरी बहू ने उसको ऐसा जवाब दिया, बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास है, मैं इसको कब बासी खाना खिलाता हूं, कब इससे उपवास कराया? ये आज भिखारी को बोलती है, कल कहीं पे भी जाके बोलेगी मुझे मेरी इज्जत की पड़ी है, मैं मेरी इज्जत गंवाना नहीं चाहता हूं, इसीलिए मुझे आपकी लड़की नहीं चाहिए। तो पंच ने कहा उस लड़की को बुलाओ। तो लड़की को बुलाया, लड़की ने सभा में आके सबको हाथ जोड़े विनम्रता से बोली, अगर मैंने कुछ गुनाह किया है तो मैं सजा के भागी हूं। उसने कहा क्या बात हुई? तो उसने कहा हमारे दर पे एक भिखारी आया जो कह रहा था 3 जन्मों से भूखा हूं। उसका भावार्थ ये है कि पहले जन्म में वो पैसे वाला था लेकिन उसने कोई दान पुण्य नहीं किया, तो दूसरे जन्म में वो भिखारी बना और अब भिखारी है। तो वो सोच रहा है अगर आज भी मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा तीसरा जन्म भी भिखारी का ही होगा, तो अगर कोई मुझे दे दे तो मैं थोड़ा दान कर लूं और अपने जन्म को सुधार लूं। तो मैंने उसको कहा कि ये बंगला गाड़ी जो भी देख रहे हो ये अगले जन्म का पुण्य खा रहे हैं, लेकिन मेरे ससुर का नियम है कि इस जन्म में दान नहीं करना है, तो कल तो उपवास करना पड़ेगा, नेक्स्ट बर्थ में कुछ नहीं मिलेगा, है ना? तो सभी के समझ में बात आ गई। वो सेठ जी के भी मन में लग गया कि बात सही है, इस जन्म में इतना सब कुछ होते हुए भी अगर दान पुण्य धर्म नहीं किया तो नेक्स्ट बर्थ हमारा ऐसा ही है। तो जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो कर्म कौन कर सकता है जिसके पास समझ है? आज एक किसान है, उसको समझ है अभी ये सीजन है तो यही बीज डालना है तो ही मुझे फल मिलेगा। एक किसान है, उसको पता है यहाँ की लैंड ऐसी है, मिट्टी ऐसी है, उसमें यही बीज फल देगा, और कितने भी अच्छे बीज लगाए उसमें फल नहीं मिलेगा, तो ये समझ जरूरी है। तो आज हम सब भाग्यशाली है कि ये समझ मिल रही है कौन सा कर्म मुझे करना है, कौन सा कर्म मुझे नहीं करना है, किसका फल क्या होगा। तो एक समझ जरूरी है, दूसरा संग जरूरी है। कहते संग तारे कुसंग बोड़े, तो संग जरूरी है। और तीसरा, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है उस परिवार के संस्कार क्या है वो भी जरूरी है, क्योंकि श्रेष्ठ गुणों के, श्रेष्ठ वर्चुअस की धरनी होगी, तो जो बीज डालेंगे वो उपज ज्यादा होगी, अच्छी प्राप्ति होगी। तो आज हम सब लकी हैं, परमात्मा के घर आए हैं और कर्मों की जानकारी मिल रही है, समझ मिल रही है। संग अच्छा करना है, किसका करना है किसका नहीं करना है, और परिवार के अंदर भी संस्कारों का सिंचन करना है। आज मैं बैठी हूं और बच्चों से कहूं, फोन उठाया, कह दो पापा नहीं है, तो वो संस्कारों का सिंचन क्या है? झूठ बोलना सिखाया, तो वो कर्म हमें नहीं करने हैं। अपने कर्मों पर ध्यान देना है। दूसरा, अगर एक बॉल मैंने डाली है कभी भी किसी भी जन्म में, वो वापस आ रही है, मतलब कि मैंने कुछ बुरा कर्म किया है, बुरा अभी आ रहा है, वो बॉल बुरे के रूप में, कोई मेरी इंसल्ट करता है, कोई मेरे पे गुस्सा कर रहा है, तो उस वक्त मैं क्या करूं? उतना गुस्सा करूं, उसकी भी इंसल्ट करूं, उसको भी जोर से बोलूं? नहीं। अगर मुझे ये कर्मों का ज्ञान है तो मुझे एक बहुत अच्छी गेंद वापस करनी है, 2 मिनट साइलेंस करना है, शुभ भावना, शुभ कामना की गेंद डालनी है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। पहले तो चुप करके उसको क्षमा दे दी है। कोई बुरा करे उस वक्त क्षमा दे सकते हैं? दे सकते हैं? कर सकते हैं? तो उस वक्त साइलेंस करनी है। अपने कर्मों के नियम को याद करना है, उस व्यक्ति को क्षमा दे देनी है और उसको एक अच्छे वाइब्रेशन की गेंद डालनी है कि वो बहुत अच्छा है। मन में कुछ और बातें चल रही है और मैं मुख से बोलूं बहुत अच्छा है, तो मुख का बोला हुआ नहीं पहुंचेगा, मेरे मन के अंदर जो चल रहा है उसके प्रति विरोध भावना, अच्छी भावना नहीं हो, वो चल रहा है तो वो भावना पहले पहुंच जाएगी। फिर हम कहेंगे मैंने व्यवहार तो अच्छा किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन रिजल्ट पहले मुझे क्षमा करना है, क्षमा करके वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है कहना है, वो वाइब्रेशंस भेजने हैं, सिर्फ कहना नहीं है, मन में फील भी करना है, उसको सहयोग देना है कि तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे बन जाएंगे। तो जो मैंने प्रेजेंट में बॉल डाला, आप बहुत अच्छे हो, तो मेरे पास फ्यूचर क्या होगा? मेरा पुराना हिसाब किताब क्लियर, मेरा पुराना हिसाब किताब क्लियर और नया हिसाब किताब जो है, जो मैंने अच्छा बीज बोया, आप अच्छे हो, अच्छे हो, तो उसका रिजल्ट फ्यूचर मेरा अच्छा ही है, फ्यूचर मेरा अच्छा ही है। तो समझ में आया? समझ में आया? ओम शांति।